Fin Nam Ba Tha Đồng Hoa Thôi Bạch Thích
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताई जाते भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। अपन लोग दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं और पूजा के भावों को कैसे पकड़ा जाए ये भी कोशिश कर रहे हैं। एक प्रश्न बहुत सहज उठता है कि जब जैन दर्शन में भगवान को कर्ता नहीं माना, भगवान वीतरागी है, कुछ लेता देता नहीं है, तब वर्शिप की क्या जरूरत, तब उसकी प्रार्थना पूजा और भक्ति की क्या आवश्यकता। ऐसा प्रश्न कई बार मन में उठ जाता है, क्योंकि प्रार्थना या भक्ति उसी की करनी चाहिए जिससे कोई अपेक्षा हो, जिस जो कोई कुछ दे सकता हो। लेकिन पहले हम कह दे पहले हम मान करके शुरुआत कर रहे हैं कि आप हमें कुछ नहीं देंगे, फिर भी क्यों हम पूजा करते हैं। ये प्रश्न वॉरशिप का उठ सकता है कि जैनों में वॉरशिप की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर इसका जवाब दिया है समंतभद्र स्वामी ने कि भगवान मैं जानता हूं कि आप वीतरागी हैं, मेरी प्रशंसा से आप खुश होकर मुझे कुछ देने वाले नहीं हैं, और मैं यदि कदाचित आपकी भक्ति ना करूं तो आप मेरे से नाराज भी होने वाले नहीं, पर फिर भी मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं क्योंकि पुनातु चित्तम दुरितान जनेभ्य, क्योंकि आपकी भक्ति करने से हमारा मन पवित्र होता है और हमारे मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और कर्म की पवित्रता, यही हमारे आत्मा के पवित्र करने के साधन है। इसलिए हम आपका आलंबन लेते हैं, आपके आलंबन से हम अपना ही मन पवित्र कर लेते हैं, इसलिए आपकी भक्ति आवश्यक है। आप मुझे देंगे लेंगे कुछ नहीं। और दूसरा एक प्रश्न आता है कि क्या भक्ति करने से मुक्ति हो जाएगी, तो फिर हम 24 घंटे करें और मुक्ति हो जाएगी। तो इस प्रश्न के जवाब में तो एक ही बात कहना है कि अकेले भक्ति से मुक्ति नहीं होती, पर भक्ति के बिना किसी की मुक्ति नहीं। शुद्धि ज्ञाने सुचिनी चरिते सत्यपि त्वयि नीचा, मैं हमेशा कहता हूं आपका ज्ञान बहुत वास्ट हो सकता है, बहुत डेप्थ में हो सकता है, आपका आचरण बहुत पवित्र हो सकता है,
रखी रहिएगा अपने पास, कुछ नहीं होने वाला उससे। यदि आपके पास भगवान के प्रति विनय, श्रद्धा और भक्ति नहीं है, क्योंकि मोक्ष का जो द्वार है उस पर जो मोह की मुद्रा जड़ी हुई है, मोह का थाला लगा हुआ है, उसके लिए तो भक्ति की चाबी चाहिए, उसके बिना वो नहीं खुलता है। इसलिए भक्ति भी आवश्यक है। भक्ति के साथ फिर हम उसको अपने जीवन में भी उतारते हैं,
तो फिर तीनों चीजें मिलकर के भक्ति
यानी सम्यक दर्शन हमारा, उसके अनुरूप ज्ञान
और उसी के अनुरूप हमारा आचरण।
भक्ति हमें थोड़ी देर के लिए राग द्वेष से मुक्त करती है, और राग द्वेष के घटावने के श्रद्धान का नाम ही तो सम्यक दर्शन है, और राग द्वेष के घटावने के ज्ञान का नाम ही तो सम्यक ज्ञान है, और राग द्वेष
घटावने या मिटावने
के क्रिया का नाम ही तो चारित्र है। हम इन क्षणों में सब कुछ कर रहे हैं। राग द्वेष मुझे घटाना है, इस बात का श्रद्धान भी है, इस बात का ज्ञान भी है, और राग द्वेष घटाने की क्रिया भी हम कर रहे हैं। तो भक्ति हमें थोड़ी देर के लिए मोक्ष मार्गी तो बना देती है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी अपनी अप्रोच क्या है। हमारी अप्रोच ये है कि भगवान की भक्ति करके हम वापिस लौटेंगे तो लाख रुपए रस्ते में पड़े मिल जाएंगे, तो भक्ति सार्थक है। तो ऐसे इस तरह के आप अगर भक्ति करेंगे तो उससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला, फिर हानि कुछ भी नहीं होने वाली, ये मान के चलिए। अगर आप गलत सलत भी भगवान के सामने टेढ़े सूढ़े सबों को, सबका निर्वाह है वहां भगवान के सामने, चाहे जैसा बीज बो आप टेढ़ा सीधा, लेकिन वो उगेगा। आप भगवान के सामने कुछ मांग के भी भक्ति करते हैं तब भी आपका लॉस नहीं होने वाला है। जैनम वर्णी ने तो एक जगह अपने उसमें लिख दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, दान और पूजा ये दोनों श्रावक के लिए हैं, तो श्रावक क्या करे, पात्र को खोजने के लिए जाए तो किसको पात्र माने किसको अपात्र माने, कसौटी ही नहीं पे कस नहीं पाता है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि जिसको हम पात्र समझ रहे हैं वो अपात्र निकल जाए और जिसको हम अपात्र समझ रहे हैं वो पात्र निकल जाए। क्या कह सकते हैं भावात्मक रूप से, बाहर से तो जितना परख सकते हैं तो परखेंगे। तो बहुत अधिक दान देते समय पात्र की ज्यादा परीक्षा नहीं करना, झगड़े में पड़ जाओगे नहीं तो। तो कहते हैं, वो लिखते हैं कि मैंने दो 100 लोग थे, 100 को ही दे दिया, मुझे मालूम है कि किसको एक इसमें से पात्र है, मैं नहीं जानता लेकिन कौन सा पात्र है, तो फिर मैंने 100 को ही दे दिया, 99 गलत जगह पहुंचने पर भी मुझे भरोसा है कि एक सही हाथ में पहुंच जाएगा, तो 99 वाला सब पीछे रह जाएगा उसे एक सही के हाथ में पहुंचने। एक तर्क है, एक लॉजिक है, अगर आप लॉजिक ही देते हैं तो दान भी हमें उतनी ही आवश्यकता है, पूरे श्रद्धा के साथ हम देंगे। पात्र पात्र चरणानि योग की परिभाषा से बाहर से देख लिया कि भाई सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है पात्र है, जघन्य है, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा के साथ में थोड़े बहुत व्रत नियम संयम का पालन करता है सज्जन है, चलिएगा, थोड़ा और अच्छा पात्र है। और अगर सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा पूर्वक और महाव्रतों का पालन करता है तो उत्तम पात्र है, इतना ही हम कह सकते हैं। ये दान के मामले में, ऐसे ही पूजा के मामले में, पूजा को मैं पूरी श्रद्धा से करूंगा, द्रव्य मैंने क्या चढ़ाया है ये इसमें ज्यादा झगड़े में नहीं पड़ूंगा कि कौन सा द्रव्य है कैसा द्रव्य है, मैं द्रव्य की पूरी, आज यही अपन पढ़ने वाले हैं, मैं जितना बनेगा जितना शक होगा उतना करूंगा, अपने अप्रोच में जितना होगा, अपने भावों की अपने शरीर की अपनी द्रव्य की जैसी बनेगी तैसी शुद्धि करूंगा, इसके बाद तो आपके ऊपर छोड़ता हूं, बने बिगड़े आपको संभालना है, क्योंकि बिगड़ तो सकती नहीं है, बनेगी ही, ये विश्वास है। वो लिखते हैं कि ये मेरा सुबह सुबह से नहा धो करके बड़े भक्ति भाव से और पूजा की थाल सजा करके भगवान के सामने आना, और आकर के जो है इस थाली में से उठा के इस थाली में डालना, सिवाय पागलपन की और है क्या? लेकिन ये मेरा पागलपन अच्छा है तुम्हारे पंचेंद्री के विषयों के पीछे भागने वाले पागलपन से, ये मेरा पागलपन अच्छा है। उन पांचों इंद्रियों के विषयों में जो हम 24 घंटे भाग रहे हैं वो पागलपन नहीं मालूम पड़ता, ये पागलपन मालूम पड़ता है, कह रहे क्या रखा हुआ है इसमें, ये तो जड़ की क्रिया है। ऐसा भी एक समय चला, अब तो धीमा हो गया है, ऐसा एक समय चला, बड़ी तेजी से चला, एक बार मैं भी गड़बड़ आ गया था। तो पूजा करते करते ये ख्याल आ जाए अगर कि ये जड़ की क्रिया है, तो पूजा वूजा सब करनी को तो रस मिटो आए न निज को स्वाद, उस समय न निज को स्वाद है न करनी को, दो ही गए। तो बड़ी सावधानी की आवश्यकता, पूरी श्रद्धा से करिएगा। प्रोसीजर में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी जाती है, आपके भाव अगर संभले हैं, मानिएगा कि आपको उसका लॉस नहीं, और भाव भी अगर आपके गड़बड़ा गए हैं, वहां न रह करके आप कहीं और भी चले गए हैं, मन नहीं भी लग रहा है, फिर भी आपने शरीर से होने वाले और वाणी से होने वाले आश्रयों को तो पवित्र ही रखा है, मन के द्वारा होने वाले आश्रय में थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ी हुई है। पर पहले तो शरीर को ही संभालना पड़ेगा, साधना पड़ेगा, मन को तो बाद में साधेंगे, वाणी साधना पड़ेगी, फिर मन सधेगा, धीरे धीरे सधेगा। इसलिए ये अल्टीमेटली मन को साधने की प्रक्रिया है, पर इसमें शुरू शुरू में थोड़ा सा शरीर का भी साधना आवश्यक है, वाणी को भी साधना आवश्यक है। उन क्षणों में मैं देखता हूं, पूजा के क्षणों में ना हम कुछ किसी से सुनना चाहते हैं, ना हम कुछ बोलना चाहते हैं, अगर वाकई हम तल्लीन हो गए उस समय कोई डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, ना कहीं किसी तरफ जाने की आवश्यकता, किसी को देखने तक का मन नहीं होगा अगर आप जिस क्षण पूजा में लीन हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा मेरे, शिकायत की कि वो दरवाजे बंद कर देते हैं और जो लोग बाहर खड़े रह जाते हैं उनको तो अंतराय का बंद हो रहा है, और ये नहीं सोच रहे हैं वो कि अगर आप भीतर जाएंगे तो जो 300 खड़े उनके अंतराय का बंद हो जाए, क्योंकि आपके जाने से उनका सारा ध्यान आपकी तरफ हो जाएगा, आप लेट लतीफ हैं और आकर के आप खड़े होंगे और थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, किसको थोड़ा सा, हमें भी थोड़ा सा जगह, हम चूंकि भीतर आ गए हैं। आप टाइम पर आकर के और शामिल नहीं होना चाह रहे हैं और टाइम पर नहीं आए हैं, तो आपके पास एक बड़ा अच्छा जवाब है कि देखो रोको मत, नहीं तो आपको अंतराय का बंद होगा। ऐसा नहीं, और बाकी लोगों का अंतराय नहीं होगा, जो कि 300 लोग कितने कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं, पहले इसी तरह की प्रक्रिया होती थी, आने वाले आ गए हैं और शांति से तल्लीन, क्योंकि अभी प्रारंभिक अवस्था में भीड़ भाड़ के बीच में पूजा मुझे तो नहीं लगता कि जो लोग करते होंगे भीतर, ठीक है कंसंट्रेशन हो जाता होगा, पर कोई सामने से निकल गया, अब निकल गया तो दिखेगा तो ही, अब आप कितने भी वो हो, सशक्त हो, लेकिन सामने से निकला दिखेगा, बाजू में आके खड़ा हुआ तो उसका इंप्रेशन पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब हो गई। उस डिस्टर्ब से बचने के लिए ये प्रक्रिया है कि आप कम से कम 10 दिन के लिए इतने एकाग्र होना सीख लें कि फिर 10 दिन के बाद कोई भी आता रहे जाता रहे आपको कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। आना तो आपको मैदान में ही पड़ेगा, ये तो रियाज है कमरे में बंद होकर के, लेकिन आना तो आपको मैदान में ही, जब सबके बीच करना पड़ेगी, ऐसा थोड़ी हमेशा रोज मिलेगा कि केविन में बंद होकर के करेंगे, पर सीखने की दृष्टि से है। तो ये सब चीजें अपने ध्यान में रख करके, पिछले दिनों अपन विनय पाठ के बारे में समझ रहे थे, उसमें 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं जानना, कहीं ऐसा ना लगने लगे कि विनय पाठ में तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ भगवान पे ही अपन ने डाल दो कि तुम ही करो जो करने हो, हम तो आ गए, तो ऐसा नहीं लगने लगना चाहिए। हमें उस समय ये याद कर लेना चाहिए कि मुझ कारज के कारण हुआ, भगवान मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ उसमें आप कारण हैं, कार्य तो मेरे भीतर होने वाला है ये मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक मैं ये मानता रहूँगा कि मैं करता हूँ, ये कर्तृत्व बुद्धि मेरे अंदर जब तक रहेगी तब तक तो मेरा कल्याण नहीं होगा। मैं इस कर्तृत्व बुद्धि को मिटाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं करता नहीं हूँ, जो हो सो आप ही हो। मोरी तो से बनी ताते करत पुकार, बहुत कीमती लाइने हैं, जो मैं कहा हूं और सो तो न मिटे और झार। ये मुझे इतना विश्वास हो गया है कि मैं किसी और के पास जाऊंगा तो मेरा संसार नहीं मिटने वाला है, ये श्रद्धा की बात है। और इसलिए जब श्रद्धा से हम इतने भर गए हैं, जबकि मन में तो यही लगता है कि नहीं भगवान का कर है, अब करने तो हमारे 4 लोग जो है वो नहीं हुए, अगर ऐसा लगता रहेगा आपको कि कोई और है भगवान के सिवाय जो कि मेरे जीवन को शांति और पवित्रता दे सकेगा, तब फिर आप इतने डिवोट नहीं हो पाएंगे उन क्षणों में। तो हमें कहना पड़ रहा है कि मोरी मैं जो कहूं हूं और सो, अगर मैं कहूं भी और किसी से तो वो भी तो संसारी ही है, मैं मुझे थोड़ी पार कर देगा। तो न मिटे उर झार, मेरी तो से बनी ताते करत होगा। और मुझे ये विश्वास हो गया है कि मेरी जब भी बनेगी, इस लाइन को कई लोगों ने चेंज करने की कोशिश की है, मूड़ी तो मुंह से बनी ताते करत पुकार, तो हम कहते तो गड़बड़ हो गया। कई जन कहते मूड़ी तो मुंह से बनी ताते, तो फिर पुकार काय कर रहे हैं आप? मूड़ी तो मुंह से बनी, तो अब अपने ही से कहो, भगवान से पुकार क्यों कर रहे हैं? नहीं, उसको झोंको तो रखे, उसके अर्थ समझे, मूड़ी तो से बनी ताते, और किसी से बनी नहीं सकती। सच्चे देवगुरु शास्त्र के बिना तो मेरी किसी से नहीं बन सकती है, जिससे बनती है उसी से तो पुकार की जा सकती, उसी को तो पुकारा जा सकता है, इसलिए मैं पुकार रहा हूं। और भक्ति में कैसा होना चाहिए ये अपन पढ़ चुके हैं, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। जरा देर के लिए उसको, मेरे ख्याल से तो वो विचार भी करे अगर मछली पानी से बाहर आने का, निकालना तो बहुत दूर की बात, पानी से बाहर निकलने का विचार भी करे तो तड़प जाएगी। ऐसे ही कभी मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाता हूं तो मैं तड़प जाऊं। क्या इतनी व्याकुलता होती है हमें भक्ति की? क्या इतनी व्याकुलता होती सच्चे देवगुरु के सानिध्य की? अगर ऐसी व्याकुलता है तब तो फिर हम आगे की लाइन कह सकते हैं कि जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाद। मैं अपनी स्वाधीनता के लिए आपके पास आया हूं, आप जन्म मरण से पार हो गए हैं, आप स्वाधीन हो गए, इसलिए आपके चरणों में मैं व्याकुल होकर के आया हूं कि उपाय क्या है ऐसे स्वाधीन होने का जो आपने स्वाधीन होकर के खुद पा लिया है। इसलिए अपनी स्वाधीनता के लिए हम आलंबन ले रहे हैं, भगवान हमें स्वाधीन कर देंगे तो इसका मतलब है उनमें बांध रखो हमें जब तुम्हें स्वाधीन कर दें। अगर भगवान हमें स्वाधीन कर देंगे तो इसके मायने ये है कि भगवान ने बांध रखा है? नहीं, भगवान ने ना बांधा है ना भी बांध दे, ना भी किसी को स्वाधीन करते हैं। लेकिन क्या करूं, मेरे अंदर जो स्वाधीन होने की तड़प है ना, वो मुझे स्वाधीन कर देगी। स्वाधीन व्यक्ति को पाने की तड़प अपनी स्वाधीनता की तड़प के बराबर ही तो है। कोई व्यक्ति जिसको चाहता है उसके जैसा होना चाहता है तो आखिर बात क्या है, उसकी तड़प अपने को उस जैसा करने की है उसे पा करके। और वही चीज इसमें है कि तुम बिन मैं व्याकुल भयो, असल में मैं आपके बिना व्याकुल होने का मेरा कारण यही है कि मैं अपनी स्वाधीनता नहीं पा पा रहा हूं और आप अपनी स्वाधीनता पा गए। मैं स्वाधीनता के लिए तड़पता हूं, अगर स्वाधीनता के लिए ऐसी तड़प होगी तो बिना सार्थक होगी और हमारा जीवन पवित्र हुए बिना नहीं रहेगा। ये अपन ने इतना विनय पाठ पढ़ के और अब अपन पूजा शुरू करते हैं। तो पूजा में सबसे पहले ओम का स्मरण करते हैं। ओम पांचों परमेष्ठी का प्रतीक है। जय 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 तीन बार ललकार रहे हैं, मैं जीत करके लौटूंगा, ललकार रहे हैं। तीन ही चीजें हैं जिनको जीता जा सकता, राग द्वेष मोह। इन तीनों को तीन बार मन से वचन से काय से जय जय जय, मैं इन तीनों को जीतने आया हूं और जिसने जीत लिया है उसकी जय जयकार करने भी आया हूं। अकेला इतने नहीं है, जिसने इन तीनों को जीत लिया उसकी जय जयकार हो। और मैं आया काय के लिए हूं, मैं भी इन राग द्वेष मोह को जीतने आया हूं, इसलिए विजयी होकर के लौटूंगा। ओम जय जय जय। फिर उसके बाद ये तो टेक्निकल शब्द है, कहीं भी चले जाइएगा नमोस्तु शब्द, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, बहुत सारे शब्द होंगे, लेकिन नमोस्तु शब्द तो पंच परमेष्ठी के अलावा किसी के लिए उपयोग में नहीं आता। इसलिए तीन बार मन से वचन से और शरीर से, या कि तीन लोग के नाथ हैं कह लीजिएगा तो तीन बार तो प्रणाम करना ही पड़ेगा अपने हाथों। तो दर्शन की प्रक्रिया में भी लिखा हुआ है कि जाते ही साथ भगवान के दर्शन होते ही प्रणाम करें, फिर विनय पूर्वक उनकी स्तुति करें और प्रणाम करें, फिर खड़े होकर अपने साथ जो भी लाए हैं वो छोड़ देवें और फिर कायस सर करके फिर तीसरा प्रणाम निवेदित करें। तीन प्रणाम करें, नमोस्तु 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 तीन बार कहते हैं, नमस्कार मंत्र पंच नमस्कार मंत्र बोलते हैं, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम। इसको एक्चुअली अपन को आर्यचंद की तरह पढ़ना चाहिए, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरीयानम नमो वच्छायानम नमो लोये सर्वसाहूनम। ये पंच नमस्कार मंत्र, अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, साधुओं को आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो लोक में, समस्त साधुओं को मेरा नमस्कार हो, व्यक्ति को नहीं उसके व्यक्तित्व को नमस्कार किया। और इस तरह बोल के जो मंत्र लिखा है उस मंत्र को पढ़ के, ये अनादि मूल मंत्र है, इसलिए इस 24 तीर्थंकर के प्रतीक और ओंकार से युक्त इस अनादि मूल मंत्र को पढ़ के और मैं पुष्पांजलि क्षेपण करता हूं, ऐसा मन बनाना चाहिए और फिर पूरे मन से क्षेपण कर देना चाहिए। फिर ये चार ही मंगल हैं, चार ही उत्तम हैं, चार ही शरण लेने योग हैं। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं, साहू के मायने हैं आचार्य उपाध्याय और साधु, ये मंगल हैं, कल्याणकारी हैं, मेरे कल्याण में सहायक भी हैं। और केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम, केवली भगवान के द्वारा जो प्रणीत अर्थात कहा गया धर्म है वो भी मंगल है। इन चारों ही लोक में उत्तम हैं, चत्तारी लोग उत्तमा, अरिहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोग उत्तमो, बहुवचन में ओ हो जाता है बहु, तो लोगोत्तमो बोलते हैं, लोग उत्तमा की जगह पर चत्तारी केवली पन्नत्तो धम्मो लोग उत्तमो। अरहंत भगवान लोक में उत्तम है, सिद्ध भगवान लोक में उत्तम है, आचार्य उपाध्याय और साधु लोक में उत्तम है, और केवली भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म है वो लोक में उत्तम है। फिर यही चार शरण लेने योग्य हैं, चत्तारी शरणम पवज्जामि, मैं चार शरणों में जाता हूं, अपनी तरफ से जाता हूं, स्वेच्छा से गच्छामि नहीं लिखा हुआ है, पवज्जामि प्रवर्जित होता हूं, दीक्षित होता हूं, मैं उस शरण को अपने आप ग्रहण करता हूं। मां एकम शरणम ब्रज, मेरी एक शरण में आ जाओ, भगवान ने नहीं कहा, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं आपकी शरण में आ रहा हूं, अपनी तरफ से अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए ये पाठ पढ़ते हैं। मैं चार शरणों को प्राप्त कर रहा हूं, अरहंत की शरण को मैं प्रवर्जित होता हूं या अरहंत की शरण को प्राप्त करता हूं, सिद्ध भगवान की शरण को प्राप्त करता हूं, साधुओं की शरण को प्राप्त करता हूं और केवली भगवान के द्वारा कहे गए धर्म की शरण को प्राप्त करता हूं। बहुत सारी शरण, एक जगह विनय पाठ में पढ़ा ना, अशरण के तुम शरण हो, सबके शरणभूत नहीं हो आप, जिसको संसार अशरण लगा हो, जिसको संसार में शरण न मिली हो, अन्यथा शरणम नास्ति, मुझे कोई शरण नहीं है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। और जब तक ये लगता रहे कि बहुत जगह पे है शरण, तो फिर आना ना आना कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं देने वाला है, लाभ हमें तब मिलेगा पूरा लाभ। मैं ये पहले कह चुका हूं कि मंदिर बिना भाव के भी आप आएंगे, हमारे पंडित जी तो पन्ना लाल जी, हम लोगों से कई बार शुरू में कहा करते थे कि भैया मैं जाने वो मंदिर सुने जाइयो, मैंने रोज कम से कम अपने काम से निकलो, सुगेल बदल ली, जो मंदिर के सामने से जात हो वो गेल में से निकल जाबू करे तो तुम्हारो काम हो जाए। हाँ नहीं जाने मंदिर के भीतर नहीं जाओ, मंदिर के सामने से निकल जाओ करे रोज, इतना ही बहुत है, उतने में भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपना रास्ता बदल करके मैं मंदिर के रास्ते से गया हूं, सवाल यह है संसार के रास्ते को मैंने छोड़ दिया है, जो मंदिर की तरफ जाता उस रास्ते को मैंने पकड़ लिया, जा रहा हूं अपने संसार के काम से, लेकिन जिस रास्ते से मंदिर पड़ता उस रास्ते से जा रहा हूं, तो मेरा संसार नहीं बढ़ेगा, एक दिन मुझे संसार से बचने का रास्ता मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी स्वेच्छा से बदला है अपना रास्ता। बहुत मुश्किल है संसार के रास्ते को बदल के भगवान के रास्ते पर जाना, उस तरफ बढ़ना, तो वही चीज इसमें है कि मैं अपनी तरफ से आपकी शरण को मैं प्रवर्जित होता हूं, स्वीकार कर रहा हूं, इतना ही पर्याप्त है। और फिर ओम नमो अरहते स्वाहा, अरहंत भगवान के लिए प्रणाम करके, कई लोग इस स्वाहा का अर्थ लेते हैं नष्ट कर देना, स्वाहा का अर्थ नष्ट वस्ट करना नहीं है, समर्पण है वहां पर, ऐसा नहीं सोचना कि अपन आगे जाके, कुछ लोगों ने कहा था कि ये स्वाहा कर रहे हैं, दीप को स्वाहा कर रहे हैं, तो रोशनी के लिए दीप स्वाहा कर देना मतलब कि अंधेरा और आ जाना, ऐसा अर्थ ले लिया था उन्होंने, ऐसा मत लीजिएगा। स्वाहा का अर्थ सिर्फ समर्पण के अर्थ में है, स्वाहा वहां नष्ट करने के अर्थ में नहीं है। ओम नमो अरहते स्वाहा, मैं अरहंत भक्त है, शांति बीज है, शांति बीज है या समर्पण के लिए भी बीज लगा सकते, समर शांति के लिए। तो ओम नमो हराते स्वाहा, मैं अपनी शांति के लिए, अपने पवित्रता के लिए नमस्कार कर रहा हूं अनंत भगवान को, पांचों परमेश्वरी को, और ऐसा करके मैं पुष्पांजलि क्षेपण करता हूं। अब देखिएगा, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायेत् पञ्च नमस्कारम् सर्वपापैः प्रमुच्यते। मैं पवित्र हूं या अपवित्र हूं, मैं भली प्रकार से स्थित हूं या कि भली प्रकार से स्थित नहीं हूं, पर ध्यायेत् पंच नमस्कारम्। जो पंच नमस्कार मंत्र को पढ़ता है वो तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्या अर्थ लेना है इसका? अब जबकि मैं पवित्र होके आया हूं, जितना मेरे से बना है उतना, तब कह रहा हूं कि इसके बावजूद भी मैं वाणी से, मैं कर्म से, मैं अपने मन से पवित्र हूं या अपवित्र हूं, भली प्रकार से खड़ा हूं या कि नहीं हो पाया हूं, सुस्थित नहीं हूं, स्थिर नहीं हो पाया हूं, फिर भी मैं पंच नमस्कार का ध्यान करूंगा तो मैं जानता हूं कि मैं पापों से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसी श्रद्धा के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं। ध्यायित लिखा भैया, उच्चरित नहीं लिखा, स्मरित भी चल सकता है। ध्यान करना, स्मरण करना, उच्चारण करने की बात नहीं है। उच्चारण तो बाह्य शुद्धि पूर्वक ही करना पड़ेगा। कदाचित बाह्य शुद्धि नहीं है तब भी हम ध्यान तो कर सकते हैं और स्मरण कर सकते हैं, उच्चारण नहीं करेंगे। उच्चारण बाह्य शुद्धि पूर्वक, मुख शुद्धि भी हो, शरीर की शुद्धि भी, जितनी अपनी शक्य है उतनी शुद्धि होनी चाहिए। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिवा या स्मरेत् परमात्मानं सावाय चंतरे सुचि। अपवित्रा पवित्र होगा, जो व्यक्ति पवित्र है या पवित्र है, सर्वावस्थान गतोपिवा, किसी भी स्थिति में है, सब अवस्थाओं में है, किसी भी अवस्था में स्थित है। यह स्मरेत परमात्मानम, जो परमात्मा का स्मरण मात्र करता है वो वायु और अभ्यंतर दोनों प्रकार की पवित्रता को पा लेता है। वायु और अभ्यंतर दोनों प्रकार की पवित्रता हमारा मूल उद्देश्य है। अगर हम बाह्य शुद्धि भी कर रहे हैं तो वो हमारी बाह्य शुद्धि हमारे अंतर शुद्धि के लिए हेतु है। हम बाह्य शुद्धि को एकदम गौण नहीं करेंगे, लेकिन हम बाह्य शुद्धि में अटक भी नहीं जाएंगे। दोनों आवश्यक है। बाह्य शुद्धि इसलिए आवश्यक है, आप देखिएगा ग्लास बहुत अच्छा कांच का है, उसमें दूध भरा हुआ है, और आप पीने जाएं और उसके पहले कोई उस कांच के ग्लास पर ऊपर गंदगी लगा दे, फिर आपसे कहे पियो, क्यों? भीतर दूध तो एकदम साफ सुथरा है, बाहर से गंदा है थोड़ा बहुत कांच का ग्लास। नहीं, आप कहेंगे ऐसे नहीं हो पाएगा, बाहर की शुद्धि भी आवश्यक है। तो वही शुद्धि अंतरंग शुद्धि के लिए आवश्यक है। एक जगह लिखा हुआ है समंतभद्र स्वामी ने कि हे भगवान, आपने अपने अभ्यंतर तप की वृद्धि के लिए बाह्य तप को अंगीकार किया। वही तप अकेले कार्यकारी नहीं है, अंतरंग तपों की वृद्धि के लिए वाही तप है। इसी तरह से अंतरंग भावों की विशुद्धि के लिए वाही विशुद्धि करके आया हूं। इसके बावजूद भी मैं जानता हूं कि भगवान का नाम लूंगा, मंत्रों के द्वारा भी शुद्धि होती है। मैं इस तरह से अपने जितना शक्य था उतनी शुद्धि करके आया हूं, और अब भगवान के सामने अपने को और शुद्ध कर रहा हूं कि मैं आपका स्मरण करूंगा तो बाहर भीतर सब पवित्र होकर के मैं अनुष्ठान, अभी अनुष्ठान शुरू नहीं किया, अनुष्ठान की शुरुआत है। अनुष्ठान शुरू करने से पहले मैं मंत्र के द्वारा अपने को शुद्ध कर रहा हूं, मैं भगवान का स्मरण करके और अपने बाहर भीतर पवित्र हो गया हूं। अपराजित मंत्रोयम् सर्वविघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः। यह अपराजित है मंत्र जो मैंने पहले बोला है, नमस्कार मंत्र, ये अपराजित अर्थात विजित करने वाला है। इसमें सब जीतने वाले लोगों की चर्चा है, और ये स्वयं अपने आप में, इसे कोई जीत नहीं सकता है, अपराजित है। जो इसे स्मरण करता है उसकी भी विजय होती है, वो भी जीत जाता है, वो भी अपने आत्मा को जीत लेता है, अपने कर्मों को जीत लेता है। अपराजित मंत्रोयम् सर्व विघ्न विनाशनम्। अब क्या करें, फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं, बताना पड़ेंगे, कोई लालच वालच नहीं है, नहीं तो आप समझो कि लालच दे रहे हो कि सर्व विघ्न विनाशन है भैया, विघ्न विघ्न दूर कर देगा, इसलिए ऐसी लालच से ही पढ़ लो। तो बेटे लालच नहीं दे रहे, ये फैक्ट्स हैं। अगर आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ेंगे तो ये तो होने ही का है, सब विघ्नों का नाश होने वाला है। विघ्न बड़े से बड़ा क्या है, संसार ही पूरा विघ्न है। और संसार से पार हो जाने की प्रक्रिया इससे, और एक घंटे के लिए मेरा मन पांच पापों से बच सका, इतनी देर के लिए मैं कितने बड़े विघ्न से बचा। पता नहीं ये हाथ किसका क्या आहित कर देते, ये कान पता नहीं किसकी निंदा सुनते, ये आंखें पता नहीं किसका बुरा देखती, और ये मुंह पता नहीं किसको कितनी बातें गलत कह देता। ये सब सार्थक हो गई पांचों इंद्रियां घंटे भर के लिए, जबकि मैं आपका नाम उच्चारण कर रहा हूं, आपका मन से स्मरण कर रहा हूं, आपके लिए ही मैं कुछ ना कुछ समर्पित कर रहा हूं, मेरे हाथ सब कुछ इंद्रियां सारी इंद्रियां आपको देख रहा हूं, सब पवित्र हो गया है। सारे विघ्न करने वाली चीजें उतनी देर के लिए हट गई। सर्व विघ्न विनाशन, कई विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगलेशु च सर्वेशु, सबका मंगल होता है, किसी एक का नहीं, पढ़ने वाले का भी और पढ़ने वाले की भावना से आसपास के पूरे वातावरण का भी मंगल होता है। इसलिए ये मंत्र पढ़ने वाले का मंगल तो करता ही है, जो नहीं पढ़ता है उसके लिए मंगलकारी है। मंगलेशु च सर्वेशु, सबका मंगल करने वाला प्रथम मंगलम भवे माता, इसको पहला मंगल इसलिए माना गया है कि ये सबका मंगल करने वाला है, इसलिए ये पहला मंगल है, प्रथम है सारे मंगलों में। ऋषो पंच नमो यारो, ये जो मैंने पंच नमस्कार मंत्र कहा है, वो सब पापों पर ना करो, सब पापों का नाश करेगा मेरे, मैं ये जान करके कर रहा हूँ। मंगलानंद के सव्य सिंह, सभी का मंगल करने वाला है। यही प्रथम मंगल है, और इसके पढ़ने से भी मंगल होता है। पद्मम होई मंगलम, इसके पढ़ने से मंगल होगा। पद्मम प्रथमम मंगलम भवेत, ऐसा भी कह सकते हैं, पद्मम होई मंगलम इसी अर्थ में निकालें, प्रथम के अर्थ में ही निकालें, पद्मम से पढ़ने के अर्थ में नहीं निकालें। ठीक, अब अपन ने जो है अरहते स्वाहा कहा था अरहम, तो अरहम शब्द क्या है? अहमिति अक्षरम ब्रह्मवाचकम परमेश्चिना सिद्ध चक्रस्य सद्वीजम सर्वतः प्रणमाम्यहम्। ये जो अरहम शब्द है वो अक्षर ब्रह्म का वाचक है। ब्रह्म अर्थात आत्मा या परमात्मा, आत्मा की परम दशा को अपन ब्रह्म मान के चले, तो ब्रह्म का वाचक है। परमेश्चिना, पांचों परमेश्चियों का जो परमिष्ठ है उनका वाचक है। सिद्ध चक्रस्य सद्वीजम, ये सिद्धों के समूह का बीज है। और हम सर्वतः प्रणमामि हम, मैं सब प्रकार से, मन से, वचन से, काय से, सब प्रकार से मैं इसे ही नमस्कार करता हूं। कर्मास्तक विनिर्मुक्तम है, अच्छा उच्चारण अरहमित्यक्षरम ब्रह्मवाचकम परमेष्टिनः सिद्ध चक्रस्य सद्वीजम सर्वता प्रणमाम्यहम् कर्मास्तक विनिर्मुक्तम् मोक्षलक्ष्मी निकेतनम् सम्यक्त्वादि गुणोपेतम् सिद्ध चक्रम नमाम्यहम् कर्माष्टक निर्मुक्तम। आठ ही तो कर्म है, इन आठों कर्मों से मुक्त करने वाला मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम। और मोक्ष लक्ष्मी, बाकी लक्ष्मी तो मिल गई लेकिन मोक्ष लक्ष्मी नहीं मिली है, उसका निकेतन, उसका घर है ये, उसको देने वाला है मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम। सम्यक आदि गुणों पेतम, और सम्यक दर्शन आदि गुणों से युक्त क्या है? सिद्ध चक्रम। अरहंत भगवान को तो प्रणाम कर लिया, सिद्धों को प्रणाम भी करना है। सिद्ध चक्रम नमामि हम, सिद्धों के समूह को, चक्र मतलब यहां पर समूह है, सिद्ध चक्रम नमामि हम, समस्त सिद्धों के समूह को मैं प्रणाम करता हूं। वे कैसे हैं? आठ कर्मों से मुक्त हैं, मैं भी आठ कर्मों से मुक्त होना चाहता हूं। वे मोक्ष लक्ष्मी को देने वाले हैं या मोक्ष लक्ष्मी के निकेतन हैं, मैं भी मोक्ष लक्ष्मी पाना चाह रहा हूं। सम्यक आदि गुणों पेतम, वे सात गुणों को प्राप्त कर गए हैं, मैं भी प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए मैं सिद्धों के समूह को भी प्रणाम कर रहा हूं। और फिर और बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ। ये जोड़ देने से लोगों के मन में बहुत सारी ऐसा लगने लगता है कि लालच दे रहे हैं। विघ्नौघा प्रलयम जानति शाकनी भूत पन्नगा, विषम निर्विषताम जाति स्तूयमाने जिनेश्वरे। क्या करें, जिनेंद्र भगवान के स्मरण से ऐसा होता है, अब क्या करें हम? अब जो चीज होती है उसको तो कहना तो पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा होता है। अब नहीं होता होता और हम अपनी तरफ से कह रहे होते तो अतिशयोक्ति होती। अब फैक्ट्स हैं तो फैक्ट्स में तो किसी लॉजिक की भी जरूरत नहीं है कि मुझे सिद्ध करके बताना हो कि अब बताओ आप, मैंने पढ़ा मंत्र और विष उतर जाना चाहिए। अब ये उतरता है, अब उतरता है तो उसका पूरा प्रोसीजर है। अब आप जब करेंगे पूरे भक्ति भाव से तब उतरेगा और होगा भी सार्थक। तो विघ्नौघा प्रलयम यान्ति, विघ्नों का औघ बहुत बड़ा समूह भी क्यों ना हो वो क्षण भर में समाप्त हो जाता है। विघ्नौघा प्रलयम यान्ति, क्षण भर में समाप्त। शाकनी भूत पन्नगा, शाकनी वाकनी भूत ये सब व्यंतर जाति के उपद्रवी देव ले लीजिएगा। वो पन्नगा मतलब नाग सर्प इत्यादि, इनके भय से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। विषम निर्विषताम याति, और विष भी निर्विष हो जाता है, वो मार नहीं पाता है। मारेगा भी तो किसको मारेगा? शरीर को मारेगा, मुझे थोड़ी मार सकता है। हाँ मैं ऐसा कह रहा हूं, नहीं तो आप किसी का शरीर मरते देखो तो कहो कि लो विष से मर गया और हमने तो नमोकारी पड़ा था, कहां बचा पाए। तो आयु कर्म का क्षय हो जाएगा तो आप पाई नहीं डाल सकते हो उसमें। यहां पर सीधा सीधा आशय बहुत आत्मिक अगर आप लेंगे तो मेरा यहां पर भगवान के स्मरण से मैं संसार में नहीं भटकूंगा, मैं विषाक्त नहीं हो पाऊंगा, मैं हमेशा पवित्र हो जाऊंगा। उस विष को दूर करने वाला है। विष क्या है? पंचेंद्रिय के विषय, सब विष है, उन पंचेंद्रिय के विषयों से मैं बच जाता हूं, इसलिए मैं निर्विष हो जाता हूं। ये बाकी सर्प का काटा हुआ विष एक बार हो सकता है कि ना भी उतरे, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं उतरेगा। पंच नमस्कार मंत्र से क्या नहीं हो सकता, उतर जाता है। लेकिन कब उतरता है? जब विश्वास होता है तब। अकेले मंत्र से नहीं उतरता, नमोकार के साथ अगर मननात मंत्र, अगर मंत्र के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है तो तब फिर वो मंत्र मंत्र है, वरना कोरे उसमें थोड़े से अक्षर हैं। उन अक्षरों के साथ जितना हमारा डिवोशन होगा वो ये सब प्रकट करेगा, अपने आप प्रकट करेगा। विघ्नों का नाश करने वाला, समस्त भयों से मुक्त करने वाला, सप्त भयों से मुक्त करने वाला और विष को भी निर्विष कर देने वाला, ऐसा जिनेंद्र भगवान का स्मरण अकेला है। स्कूल माने जीवित करे, मैं पढ़ूंगा, भगवान का नाम लूंगा और मेरा ये सब कुछ ठीक हो जाने वाला, ऐसा विचार कर। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैः करु सुदीप सुधूप फलार्घकैः धवल मंगल गान रवाकुलु जिन ग्रहे जिननाथ महम यजे। जिन ग्रहे जिननाथम अहम यजे, जिनेन्द्र भगवान के मंदिर में जिनेन्द्र भगवान को मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं पूज रहा हूँ, मैं उनकी वंदना कर रहा हूँ, मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ, अर्चना कर रहा हूँ उनकी। जिनेंद्र भगवान का घर कैसा है भाई? धवल, बहुत उज्ज्वल है,
उज्जवल का अकेले वाइस सुने से नहीं लेना, पवित्र बहुत धबल से सफेद भी ले सकते हैं और उज्जवल भी ले सकते हैं, पवित्र भी ले सकते हैं, ऐसा धबल। और मंगल गान रवा कुले सुनसान नहीं मचा वहाँ पर, लोग कहते हैं बड़ा हल्ला होता है मंदिर में, कहाँ होगा तो बताओ। गणेश धवल है और मंगल गान रवा कुले, वहाँ पर सुबह से शाम तक मंगल गान हो रहा है, रव अर्थात उसका स्वर जो है पूरे मंदिर में व्याप्त हो गया, मंगल गान के स्वर पूरे मंदिर में गूंज रहे हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान के घर में मैं जिनेंद्र भगवान की पूजा करने आया हूँ, क्या लेके आया हूँ, खाली हाथ तो नहीं आ गया हूँ, मैं खाली हाथ नहीं, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आया हूँ। और इन सब चीज़ों के सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अपने मन के रस में पास करके लाया हूँ। आज चीज़ें तो हैं अलग अलग भी हो सकती थी, मैंने सबको अपने भावनाओं के रस में पास करके हर बनाया, वो लेकर के आया हूँ जिसमें उदक जल है, चंदन भी है, चंदुल अक्षत भी है, पुष्प भी है, इन सबके द्वारा कई ही लिखा है, इन सबके द्वारा पृथक पृथक भी और एक साथ भी, चरु चरु अर्थात होता मजदूर और सुदीप अच्छा बढ़िया सा दीपक लेकर आया, सुधूप बढ़िया सुख धूप लेके आया, कल कल भी लेके आया, और इन सबको मिला करके अर्घ कई है, इस अर्घ के द्वारा मैं भगवान की पूजा करने के लिए पूरे मन से भगवान की पूजा करके ब्रज हाथ में लेकर के आइएगा, तब फिर देखिएगा कितना मज़ा आता है। किसी दिन एक आध दिन ऐसा भी करिएगा कि अपने हाथ से पानी भरिएगा, अपने हाथ से छानिएगा, अपने हाथ से उसे प्रार्थित करिएगा, फिर उसके बाद ब्रज धोइएगा, लगाइएगा पूरे मन से, और फिर उसके बाद करिएगा, फिर उस दिन का आनंद देखिए। कभी एक आध दिन हफ्ते में एक दिन, तो ऐसा 15 दिन में एक दिन, महीने भर में चलो और कंसेशन करो, साल में एक बार कर लो, छोटा दिन करके दो, कितना मज़ा आता है पूरे मन के साथ, 1.5 घंटे लगेगा लगभग और कुछ नहीं, उस दिन एक दिन के लिए सब चीज़ों से विद्या करके फिर उस आनंद को भी देखना चाहिए कैसा लगता होगा जब हम खुद अपने हाथ से पूरे भक्ति भाव से सारी चीज। इसी तरह से एक दिन अपना खाना बना के भी खुद खाना चाहिए, हैं जब हमको कुछ गड़बड़ कर देते तो हम ये ऐसा नहीं बना, वो वैसा नहीं बना, तो फिर हमको मालूम क्या कहा जाता था, इसका एडमिशन हॉस्टल में करवा दो, घर का खाना फिर इसको पसंद आने लगेगा, जब एक दिन हॉस्टल में खाएगा ना कैसे ही का कैसे ही, तो समझ में आ जाएगा। अभी जब हम मूल मोस निकालते हैं कि पुजारी जी दौड़ो ले आओ, जो नहीं लगाओ वो नहीं करो, दूसरे में लगाओ हमने तुम्हें, ऐसा कहने का जो मन हो जाता है ना पूजा के समय, वो सब ठंडा पड़ जाएगा जिस दिन अपने हाथ से सारी ब्रज लगा करके रखोगे,
उस दिन फिर कहोगे कि वाह पुजारी जी धन्यवाद, मैं तो अभी आया और पूरी सब लगी मिल गई, आपको कितनी मेहनत करना पड़ी हो, कितना आपने सुबह से उद्यम किया होगा, मैं ठीक अपना 5:15 बजे शुरू करता हूँ, हाँ मैं 5:15 बजे जब वो भक्ति शुरू करता हूँ या सामायिक शुरू करता हूँ तो उसके पहले ही आवाज आना शुरू हो जाती है पानी भरने की, बिल्कुल, तो कितनी मेहनत से और व्यक्ति पूरी हमें तैयार करता है, उस मेहनत का भी उसमें हाथ, हमारे धर्म ध्यान में कितने लोग सहयोगी हैं, कितने हाथ, इतना पूरा हमें जाने अगर हम, तो फिर आनंद और अधिक आनंद आएगा कि कितने लोग सहयोगी, कितने लोगों के सहयोग से और मैं ये पूजा रचा रहा हूँ, भगवान आपकी पूजा करना आसान नहीं है, कितना पुण्य मेरा होगा कि मुझे सब चीज़ें हाथ पर ऐसे रखी हुई मिल गई, और सबसे बड़ी चीज़ कि मेरा मन बना, हाथ पे तो कोई भी रख देगा लेकिन मन नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, मन बना मैं यहाँ तक आया, तो ऐसे मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, हाथ द्रव लेके आया हूँ, अपने भावों के रस में उन्हें पाक करके लाया हूँ और जिनेंद्र भगवान के घर में जिनेंद्र भगवान की अर्चना कर रहा हूँ, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उज्ज्वल घर है जहाँ की मेरा मन भी पवित्र हो जाता है और जहाँ मंगल गान तो निरंतर होता रहता है। शुरू करते हैं, टाइम रख दीजिएगा आप, मेरे पास घड़ी नहीं रखी। श्रीमद जिनेन्द्रमा विवंज जगत त्रयेशम साद्वादनायकमनन्त चतुष्टयार्यम श्री मूल संघ सुदृशाम सुकृते कहे तुर जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया फिदाई। मेरे द्वारा ये जैनेन्द्र भगवान की पूजा की विधि अब शुरू की जा रही है भाई, मैं अपने से ही कह रहा हूं, भगवान तो नहीं सुन रहे मेरी वहां पर, लेकिन मैं अपने से कह रहा हूं कि ये जो विधि है ना भगवान की पूजा की, वो मेरे द्वारा शुरू की जा रही है। क्यों शुरू की जा रही? सुकृतैक हेतु, मैं क्या चाहता हूं? सुकृत हो अर्थात मुझे पुण्य की प्राप्ति हो, मांग रहे हैं यहां पर बिल्कुल ठेठ विशुद्ध भाषा में, कुछ नहीं होने वाला इससे सिवाय पुण्य के अर्जन के, और मैं चाह रहा हूं कि पुण्य का अर्जन हो, तभी तो आया हूं। अब इसमें कहीं कोई लॉजिक नहीं चलेगा, अगर लॉजिक है आपके पास बैठिए घर, काय आओ आप, आय काय को करने के लिए। लाइन इसलिए इतनी बढ़िया लिख दी सुकृतय की हेतु, हेतु ही मैं बनाकर कह रहा हूं कि पुण्य का अर्जन करूंगा, नहीं तो संसार में सिवाय पाप के मेरे पास कुछ पल्ले में नहीं आता, और मैंने कोई पूर्ण पुण्य अर्जित किया होगा उसी की वजह से तो यहां तक आ पाया हूं, तो वो पुण्य बना रहा है मेरा। भगवान मैंने बहुत वर्षों हो गए आपकी भक्ति करी, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, अब तो आप वरदान मत दे देना, मेरा शरीर भी बहुत जर्जर हो गया, आपका वरदान झेल नहीं पाएगा, अगर आप मेरी भक्ति से खुश हो तो अपनी भक्ति करवाते रहना, इतना ही करना, इतने ही पुण्य देना, और नहीं चाहिए संसार की विषय सामग्री जोड़ने के लिए पुण्य नहीं चाहिए है, आप इतने ही पुण्य चाहिए कि आपकी भक्ति करता रहूं, उसी पुण्य को पाने के लिए यहां पर आया हूं। सुकृतई की हेतु, इसमें सिर्फ एक ही कॉज है, एक ही मेजर कॉज है कि मैं यहां पर पुण्य का अर्जन करने आया हूं, इसलिए इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं, और अपने मन से नहीं कर रहा हूं, मैं तो बहुत अज्ञानी हूं, जानता भी नहीं हूं कि क्या परंपरा है। श्री मूल संघ सुदृशाम, मूल संघ जो भगवान का है उसके द्वारा सुदृशाम जो सम्यक दृष्टियों के लिए प्रक्रिया बताई है वही प्रक्रिया कर लो। सुदृशाम जिनकी दृष्टि पवित्र है, जो सम्यक दृष्टि है, उन सम्यक दृष्टियों के लिए मूल संघ के द्वारा जो विधि बताई है वही विधि कर रहा हूं, अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहा हूं, और कोई पहली बार नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत छोटा सा हूं, अपनी लघुता भी प्रकट कर रहे हैं, मैं कोई पहली बार नहीं कर रहा हूं, मेरे से पहले ये परंपरा से चली आ रही है, मैं तो सिर्फ उसमें जैसे किसी ने दीपक जलाया हो और मैंने तो उस दीपक से सिर्फ आरती उतारी है, मैंने तो जलाए भी नहीं है दीपक, दीपक तो पहले से जल रहा था, उजाला दे रहा था, मैंने तो अपना हाथ लगा दिया उसमें, ऐसा विनम्र होकर के मैं शुरू कर रहा हूं। और किसकी कर रहा हूं मैं अर्चना? कैसे हैं वो भगवान? श्रीमद जिनेन्द्रम अभिवंद्य, जिनेन्द्र भगवान को प्रणाम करके मैं अपनी पूजा की विधि शुरू कर रहा हूं, जो तीनों लोगों के नाथ हैं, जगत त्रयेशम तीनों लोगों के नाथ हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान को, और स्याद्वाद नायकम, स्याद्वाद के नायक हैं, अर्थात जिन्होंने वस्तु स्वरूप को ठीक ठीक सापेक्ष रूप से कथन करने में माहिर हैं जो, या दक्ष हैं जो, उनके लिए स्याद्वाद के प्रणेता हैं उनके लिए मैं, और अनंत चतुष्टारियम, और जो अनंत चतुष्टय के द्वारा पूज्य हैं उनके लिए, उन जिनेन्द्र भगवान को प्रणाम करके मैं इस प्रक्रिया को शुरू कर रहा हूं, जो मेरा मुख्य उद्देश्य पुण्य का अर्जन करना है, और परंपरा से जो सम्यक दृष्टि लोगों के लिए प्रक्रिया कही गई उसे ही करना यहां पर मेरा मुख्य उद्देश्य है। पूरा अर्थ क्या हुआ? हे भगवान, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, आप तीनों लोगों के नाथ हैं, स्याद्वाद के नायक हैं, आपने अनंत चतुष्टय को पाया है, मैं आपकी पूजा करने के लिए आया हूं, और पूजा भी जो पहले से चली आ रही है परंपरा से हम सम्यक दृष्टि जीवों के लिए, वही पूजा मैं कर रहा हूं, कोई बहुत नई बात नहीं कर रहा हूं, और मैं चाहता क्या हूं? मैं पुण्य का अर्जन करना चाहता हूं, इसलिए आपकी ये मैंने पूजा यहां पर रची है। बहुत साफ साफ सी बात है, आपके सामने कोई छुपा हुआ नहीं है मैं क्या करने जा रहा हूं, तो ऐसा डिक्लेरेशन करके भगवान के सामने पूजा शुरू कर रहे हैं। और फिर कल्याणकारी हो, स्वस्ति त्रिलोक गुरु, स्वस्ति त्रिलोक गुरु वे जिना पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृग्मयायो स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। स्वस्ति मंगल हो, कल्याणकारी हो, तीनों लोकों के जो गुरु हैं, परम गुरु साक्षात गुरु तो भगवान ही होते हैं, समुशरण में बैठे जिन पुंगो अर्थात जिनेंद्रों में भी श्रेष्ठ तीर्थंकर भगवान है। सब अरंत भगवान श्रेष्ठ हैं, लेकिन क्या करें, सारे अरंत भगवान में भी तीर्थंकर, उनके समुशरण में भी कई अरंत भगवान बैठे, केवली भगवान बैठे, हजारों की संख्या में बैठे तीर्थंकर के समुशरण में। उन जिन पुंग भाए जिनेंद्र भगवान के भी मैं भी जो सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे जिन प्रधान अर्थात तीर्थंकर भगवान वे मेरे लिए स्वस्ति हो, मेरे कल्याण में सहयोगी बने, सहयोगी बने कह रहे हैं, मेरा कल्याण करे नहीं कह रहे, मेरे कल्याण में सहयोगी होंगे। स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वाभाविक महिमा जिनकी है उससे बड़े हुए, स्वाभाविक रूप से जिनके भीतर क्या आया है, स्वभाव महिमोदय, स्वभाव रूप स्वाभाविक प्रकाश से बड़े हुए, ऐसा लिखा उन्होंने, या कि स्वाभाविक महिमा का उदय होने से, अच्छा स्वभाव के प्रकट हो जाने से जो अपने आत्मा में स्थित हो गए हैं, ऐसे वे भगवान मेरे लिए मंगल स्वरूप हो, मेरे लिए कल्याणकारी हो। स्वस्ति प्रकाश सहजोर्ज दृग्मयाय, और जिनके अंदर सहज रूप से प्रकाश उत्पन्न हुआ, केवल ज्ञान सहज रूप से उत्पन्न हुआ, और दृग्मयाय केवल दर्शन भी जिनके भीतर प्रकट हुआ है, ऐसे केवल ज्ञान और केवल दर्शन से युक्त जो भगवान है वे मेरे लिए कल्याण करें। स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, और प्रसन्न के मतलब है उज्ज्वल, बहुत ललित अर्थात बहुत सुंदर, और अद्भुत तो है ही, अद्भुत कौन सा है, समुशरण आदि वैभव तो बहुत अद्भुत होता है, उस समुशरण आदि वैभव से जो युक्त हैं ऐसे जिनेंद्र भगवान मेरे लिए स्वस्ति अर्थात मंगल हो, मेरे लिए कल्याण में सहयोगी बने। विनम्रता अपनी प्रकट कर रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, इन सब के माध्यम से ही मेरा कल्याण, यहां पर मैंने माध्यम लिया है, इसलिए उस माध्यम उस आलंबन की आलंबन के माध्यम से मेरे जीवन में परिवर्तन होगा, इसलिए उस आलंबन को मैं प्रणाम कर रहा हूं। स्वस्ति क्षमत विमल बोध सुधा।